अच्छा आप बड़े बातों करो, मुझे भाई के लिए स्पेशल सरप्राइज तैयार करना है। बंधन ने आर्या को देखकर तिरछी मुस्कुराहट दी। वो शौर्य और मायरा के साथ वहां से आर्या के कमरे में चली गई। उनके जाते ही आर्या ने कहा, तो फिर हम चलते हैं। मैंने सोचा तुम दोनों यहां हमारे साथ रहोगे, आशुतोष ने हैरानी से कहा। इन 6 महीनों में आर्या और आशुतोष की गलतफहमियां तो दूर हो गई थी, पर दोनों अभी भी ज्यादा बात नहीं करते थे। हाँ, हम यहीं रहने वाले हैं, बस आज की रात मैं शिवी के साथ अपने घर जाना चाहता हूँ, आर्या ने कहा। आशुतोष ने उसकी बात पर हामी भरी। उनकी गाड़ी तैयार थी। आर्या और शिवी उन सबको बाय बोलकर गाड़ी में बैठे थे। गेट से बाहर निकलते ही शिवी ने सबसे पहले कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें सबके सामने ये कहते हुए कि आज की रात मुझे इसके साथ अलग से बितानी है? बोलते हुए वो गाड़ी में बैठी। शिवी गाड़ी ड्राइव कर रही थी जबकि आर्या उसके पास वाली सीट पर था। सो वॉट, तुम मेरी वाइफ हो और वो बच्चे नहीं हैं, आर्या ने बेफिक्री से जवाब दिया। तुम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकते हो? खैर, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, शिवी ने आंखें घुमाकर कहा और फिर गाड़ी ड्राइव करने लगी। हाँ तो बहस मत करो, मैं बिना सोचे समझे कुछ नहीं करता। अगर आज रात मैंने मेरे घर जाने का प्लान किया है तो उसमें भी कुछ सोचा ही होगा, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा, आर्या ने कहा ही था कि तभी उसके फोन पर बंधन का कॉल आया। उसने जानबूझकर कॉल पिक करके फोन स्पीकर पर किया ताकि शिवी भी उनकी बातें सुन सके। सामने से बंधन की आवाज़ आई, भाई आप कहाँ रह गए? मैं पिछले 1 घंटे से आपका वेट कर रही हूँ। तुम मेरा वेट क्यों कर रही हो बाय द वे? आर्या ने जानबूझकर पूछा। वो तुम्हारा वेट इसलिए कर रही है क्योंकि तुमने जो भी किया उसका उसे रिवेंज लेना है, बंधन के बजाय शिवी ने कहा। हाँ तो मैं तुमसे भी अच्छे से जानता हूँ बेटू, तुम भूल गई हो कि तुम्हें मैंने ही तुम्हें पाला है? तुम्हें क्या लगा मैं अपनी इतनी स्पेशल नाइट तुम्हें खराब करने दूंगा? खैर कल सुबह मिलते हैं, बाय, आर्या ने हंसते हुए कॉल कट कर दिया। कितने बुरे हो तुम, शिवी ने उसकी तरफ घूर कर देखा। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कितना बुरा हूँ मैं, आर्या ने जवाब दिया। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी आर्या के घर के आगे थी। गाड़ी अंदर पार्क करने के बाद शिवी अंदर आई तो वो हैरानी में रह गई। आर्या ने उस घर को भी काफी अच्छे से डेकोरेट कराया था। उसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। वैसे इतने भी बुरे नहीं हो, शिवी ने नजरें झुकाकर कहा। अच्छा, आर्या ने उसे खींचते हुए अपने पास कर लिया। मैं कितना भी बुरा नहीं हूँ, आई लव यू शिवी, थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए, इसे फिर से ब्यूटीफुल बनाने के लिए, बोलते हुए आर्या शिवी के और पास आ गया। उन दोनों के सिर आपस में जुड़े हुए थे। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, तुम नहीं जानते आर्या, तुम्हारे बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं करना चाहती। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, और तुम्हें क्या लगता है मैं होने दूंगा? कहते हुए आर्या के होठ शिवी के होठों पर थे। उसके बाद आर्या ने शिवी को गोद में उठाया और अपने रूम में ले गया जहाँ दोनों के बीच की सभी दूरियां मिट चुकी थी। इंडियाना की एक छोटी सी बहस से हुए इस सफर की शुरुआत शिवी और आर्या के प्यार पर जाकर खत्म हुई। दोनों के रिश्ते ने कई उतार चढ़ाव देखे और उसके बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बनकर। कुछ मीठी यादें। हेलो एवरीवन, आपने कहानी को बहुत प्यार दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। मुझे आज भी याद है मैंने ये कहानी पॉकेट नॉवल रीडर पर शुरू की थी, फिर किसी रीजन से यहाँ शुरू कर दिया। आई होप ये इमोशंस का रोलर कोस्टर आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश यही रहती है आपके दिल तक पहुँचना, कई बार उसमें कमी रह जाती है, कई बार मैं सफल हो जाती है। कहानी के आखिरी भाग पर दिल भरकर कॉमेंट कीजिए। बाकी यूँ ही साथ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे कभी किसी और नई कहानी पर। धन्यवाद। एक न्यू स्टोरी का प्रोमो शेयर कर रही हूँ। आपको माफिया लव टाइप की स्टोरी पसंद है तो ये आपको अच्छी लगेगी। ये कहानी डार्क रहने वाली है, पहली बार नया करने की कोशिश की है। समंदर किनारे ठंडी हवाएं चल रही थी, वहाँ कुछ लड़के लड़कियाँ पार्टी कर रहे थे। वो सिडनी का फेमस बीच एरिया था। उस एरिया को किसी VIP ने बुक किया था, इस वजह से वहाँ उन्हीं के लोग मौजूद थे। सबने स्विम ड्रेसेस पहनी थी। इन सबके बीच वो सभी एक लड़की को घेर कर खड़े थे। वो बीच पार्टी उसी लट्रो की थी। उसने रेनबो लाइन्स का स्विम सूट पहना था जिसमें उसका परफेक्ट फिगर उभर कर आ रहा था। उसकी लाइट पेल स्किन थी और आंखों का रंग हल्का ग्रे था। वो दिखने में काफी हॉट थी। उसके हाथ में एक महंगी शैंपेन की बोतल थी। सारा, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, तुम सच में प्रिंसेस हो। इस तरह की पार्टी तुम्हारे अलावा और कोई थ्रो नहीं कर सकता। तुमने पूरा बीच बुक कर लिया, इट्स फैबुलस, एक लड़का उसकी तारीफ करते हुए बोला। इसी के साथ सभी सारा के लिए चीयर करने लगे। उसकी तारीफ से खुश होकर सारा मुस्कुराई। वो सारा सिंघानिया थी, एक माफिया प्रिंसेस। वहीं उस भीड़ से थोड़ी दूर एक और लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े बाकियों से अलग थे। उसने स्विम सूट पहनने के बजाय घुटनों तक की पिंक फ्लोरल बीच फ्रॉक पहनी थी। उसके बाल कमर तक के थे और हल्के घुंघराले थे। उसने बालों के एक साइड एक बड़ा सा आर्टिफिशियल येलो फ्लावर लगा रखा था। वो दिखने में काफी मासूम और खूबसूरत थी। पार्टी से एक लड़का निकलकर उसके पास आने लगा। हे कृषा, तुम यहाँ अकेले बैठकर बोर क्यों हो रही हो? लेट्स हैव सम पार्टी बेब। उसने जबरदस्ती कृषा का हाथ पकड़ा और उसे पार्टी की तरफ खींचकर ले जाने लगा। कृषा उसे अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो चिल्लाकर बोली, प्लीज स्टीव, लीव माई हैंड,
मुझे नहीं करनी कोई पार्टी। म्यूजिक लाउड होने की वजह से उसकी आवाज पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन डांस करते हुए सारा ने स्टीव को कृषा के साथ बदतमीजी करते देख लिया। उसने इशारे से म्यूजिक रुकवाया। वहां एक अच्छा खासा सीन क्रिएट हो गया, जो आपको कहानी के पहले भाग में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल गई। आज तो तुमने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, काम डाउन वरना यहाँ भी ब्लास्ट हो जाएगा। कृषा ने उसे चीयर करने की कोशिश की। अपना मुंह बंद रखो, सारा ने जवाब दिया। वो वाकई काफी गुस्से में थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, सिक्योरिटी गार्ड्स उन दोनों के पीछे थे। उन दोनों से थोड़ा ऊंचाई पर एक छोटा सा पक्षी उड़ रहा था। वो एक एडवांस ड्रोन था, जो उन पर नजर रखने के लिए किसी ने प्लांट किया था। जैसे ही उस इंसान में उन दोनों को अकेले देखा, उसके फेस पर स्माइल थी। बी रेडी फॉर एक्शन, एक आदमी की कोल्ड वॉइस आई। उसकी आवाज सुनकर कहीं दूर हलचल होने लगी। जिस इंसान ने उन्हें ऑर्डर दिया वो कहीं और मौजूद था। उसके हाथ में आईपैड था, जिससे वो उन दोनों पर नजरें बनाए हुए था। उसकी हेजल ब्लू आईज एक पल के लिए भी स्क्रीन से इधर उधर नहीं हुई थी। जिसने स्विम सूट पहना है उसे उठाना है, बाकी लोगों को मार देना है, उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ में कहा। लेकिन अगर दूसरी लड़की को छोड़ा तो वो जाकर कोई भी क्लू दे सकती हैं। पिछले 5 महीने में पहली बार ये ज्यादा भीड़ से अलग है। गार्ड से हम निपट लेंगे क्योंकि वो अलग गाड़ी में होंगे, पर ये लड़की सारा सिंघानिया के साथ ही रहेगी। जवाब में एक आदमी की भारी आवाज आई, वो पायलट के पास था। ओके देन, फिर उसे डेस्टिनेशन पर लाकर मार देना, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लगभग 21 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद चॉपर लंदन पहुंचा। वो एक बड़े से विला के पीछे बने हेलीपैड पर लैंड किया। वहां की सिक्योरिटी भी काफी टाइट थी। इन सब के बीच सारा और कृषा को अंदर ले जाया गया। कुछ ही देर में वो दोनों उस शख्स के सामने मौजूद थी जिसने ये करवाया था। उसे देखते ही सारा बोली, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। पूरा माफिया एम्पायर मिलकर तुम्हें ऐसी सजा देगी जो तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेगी।
उस लड़के ने शांत चेहरे के साथ सारा की बात सुनी। उसने अपना चश्मा उतारा और उन दोनों को गौर से देखा। वो चुपचाप खड़ा था। तभी सारा ने देखा कि उसके हेड सिक्योरिटी गार्ड को यहां लाया जा रहा था। उसके कंधे और घुटनों पर गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो दर्द से कराह रहा था। उस शख्स ने गन निकाली। वो सारा के सिक्योरिटी गार्ड के पास गया, उसे बालों से पकड़ा और सारा की तरफ देखते हुए गन उसके मुंह में डालकर 2 गोली चला दी। इसके बाद दोबारा गोली चलाई और एक के बाद एक 3 फायर उसके मुंह में किए। कुछ ही सेकंड में गार्ड की लाश जमीन पर पड़ी थी। फिर वो खड़ा हुआ और सारा के पास आकर बोला, तो क्या कह रही थी, कुछ महंगा पड़ेगा? कितना महंगा? इतना महंगा कि वो युगराना को टक्कर दे सके। उसके अपना नाम लेते ही सारा वहीं फ्रीज हो गई। युगराना उर्फ डेविल का अब तक उसने नाम सुना था और आज वो उसके सामने था। ये बस एक छोटा सा हिस्सा, वो भी सिर्फ पहले पार्ट का। पूरी कहानी पढ़ने के लिए आप मेरी प्रोफाइल पर जाइए या फिर अंडर द माफिया मूड लिखकर सर्च करेंगे तो कहानी आ जाएगी।